आठवां भाग प्रगतिशील तत्व मानवतावाद। प्रगतिशील तत्व मानवतावाद मानववाद। पॉइंट नंबर वन, युगांत के प्रकाशन से पंत जी के काव्य में नया मोड़ आता है। यह नयापन वस्तु और शिल्प दोनों में है। कवि चिरकाल से चली आ रही परंपरागत विरासत को छोड़कर नए ढंग के भाव और नूतन विचार पद्धति अपनाने का आह्वान करता है। ऐसा इसलिए कि नए युग के लिए पुराने प्रतिमान व्यर्थ साबित हो रहे थे और उनसे किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता था। कवि की दृष्टि में प्राचीनता का मोह कल्याणकारी नहीं है। जगत रूपी वृक्ष के जीर्ण पत्तों को शीघ्र झड़ना ही चाहिए। कवि द्वारा आहत नए युग बोध में मार्क्सवाद का प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। कुछ आलोचकों ने पंत जी की इस नए बोध से संबंधित रचनाओं को प्रगतिवादी काव्य की कोटि में रखना चाहा है। जो भी हो, पर कवि अपनी प्रवृत्ति में यदि वादग्रस्त नहीं है तो प्रगतिशील अवश्य है। पंत जी की यह दृष्टि सामंतवादी रूढ़ विचारधारा से मुक्ति पाकर समग्र जनता के समान कल्याण की आकांक्षा रखती है। कवि समता पर आधारित वर्ग विहीन समाज रचने के लिए उच्च स्वर से जनता का आह्वान करता है। नए समाज की रचना के लिए अमीरी और गरीबी के बीच की खाई पाटना आवश्यक है और यह परिश्रम साध्य है। इसलिए कवि श्रम जीविता को सर्वोपरि महत्व देता है। सृष्टि में कला के दो रूप हैं। कला का प्रथम रूप नैसर्गिक है। सृष्टि के प्रत्येक मानवोपयोगी उपादान और कार्य व्यापार निसर्ग कला के उदाहरण है। कला का द्वितीय रूप मनुष्यकृत है। मनुष्य अपने परिश्रम से नैसर्गिक कला के अधूरेपन को दूर करता है। इस प्रकार निसर्ग और मनुष्य दोनों के सम्मिलित सहयोग से कला का पूर्ण रूप संभव होता है। यह लौकिक जो प्राकृतिक कला, यह काव्य अलौकिक सदा चला आ रहा सृष्टि के साथ फल। प्रकृति की अधूरी कला को पूर्णता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति श्रम करे। कवि की दृष्टि में श्रम के समुचित विनियोग से मानव जीवन अक्षय वैभव से भरपूर हो सकता है। इस प्रकार पंत जी कला की रूढ़ परिभाषा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देते हैं। अभी तक कला अपना साध्य स्वयं थी, परंतु अब कला का साध्य मनुष्य हो गया। अतः ऐसी कला जो मनुष्य के श्रम का दोहन करके मनुष्य का अभ्युदय नहीं करती, कला न होकर मनुष्य का अपमान है। ताज शीर्षक कविता में कवि ने इसी संदर्भ में ताज को मृत्यु का अमर और अपार्थिव पूजन कहा है। कवि मनुष्य की पलायनवादी प्रवृत्तियों पर भी प्रहार करता है। इहलोक की उपेक्षा करके परलोक का ध्यान लगाए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वाले भारतीयों को कवि सचेत करता है। वह भारतीयों का ध्यान पुण्यात्मा धरती की ओर आकृष्ट करता है। ऐसी धरती जो स्वर्गीय सुषमा से भरपूर है और मानवता के ऊंचे आदर्शों की संभावना वाले नर रत्नों को उत्पन्न करती है। देखो भू को, स्वर्गिक भू को, मानो पुण्य पशु को, युगवाणी से। पॉइंट नंबर टू, कवि मानव मात्र का यश गाता है। उसे विश्वास है कि एक न एक दिन विश्व के सभी मनुष्य मिलकर एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं होगा और मनुष्य स्वयं अपना स्वामित्व करेगा। ऐसा मानव समाज जहां प्रत्येक मनुष्य प्रेम पूर्वक रह सके, इसी धरती पर संभव है। इसीलिए मनुष्य को पारलौकिक स्वर्ग प्राप्ति की प्रयत्न छोड़कर अपने को ईश्वर और धरती को स्वर्ग बनाने का उद्योग करना चाहिए। मनुज प्रेम से जहाँ रह सके मानव ईश्वर, और कौन सा स्वर्ग चाहिए तुझे धरा पर, युगवाणी से। पॉइंट नंबर थ्री, पंत ने ग्राम्य में स्वर्णिम धरती के वैभव का मनोरम चित्र खींचा है। उसकी दृष्टि में अरहर और सनई के पीले फूल, स्वर्णिम वसुंधरा की स्वर्ण संपदा और तीसी के नीले नीले फूल नीलम मणि हैं। नए युग के संवाहक मजदूर और मजदूरनियाँ होंगे, इसीलिए कवि ने उन्हें अपनी कविता में नायक और नायिका के रूप में चित्रित करता है। स्वर्णिम धरती के निर्माण में मजदूरनी के योगदान का कोई लेखा जोखा नहीं है। क्योंकि उसने जड़ कंचुकी को उतार फेंक कर संसार के कल्याण के लिए अपना हृदय उन्मुक्त भाव से खोल दिया है। तात्पर्य यह है कि धरती को स्वर्ग बनाने के लिए उसने इतना अधिक त्याग किया है कि उसके शरीर पर लाज ढकने के लिए कंचुकी तक नहीं है। कवि का कथन है, तुमने निस्तन की तुच्छ कंचुकी को उतार, जग के हित खोल दिए नारी हृदय के द्वार। ग्राम्या से पॉइंट नंबर 4, नया युग मजदूरों, उपेक्षितों और पीड़ितों के उत्थान का युग है। कवि की वाणी तभी सार्थक है जब वह जन सामान्य का हित करे, अन्यथा वह बाग विलास मात्र है। स्पष्ट है, जनता की भाषा जनता की ही तरह सीधी सादी, अविधा प्रधान और अलंकार रहित होगी। जबकि दृष्टि में काव्य का लक्ष्य समाज के एक विशेष तबके का अनुरंजन न होकर जन सामान्य का वास्तविक कल्याण होना चाहिए, वह वाणी को संबोधित करके कहता है, तुम वहन कर सको उस जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ग्राम्या से यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।